मेरे घनिष्ठ मित्रों नमस्कार। आज 8 दिसंबर 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों इस बात के लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा कि फिलहाल गांव से शहर आने के बाद मैंने क्या क्या किया, कैसे किया, इस पर मैं थोड़ी सी बातें कर रहा हूं और माफी इस बात के लिए मांग रहा हूं कि मैं अपनी बात कर रहा हूं। अपनी बात कहना करना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि चूंकि वो मेरे अपने अनुभव हैं, आप सब थोड़ा बहुत मुझसे प्यार करते हैं, मुझ पर थोड़ा बहुत विश्वास भी करते हैं, मुझे सुनते भी हैं, तो यदि मैं अपने माध्यम से कुछ अपने मन की बातें, अपने दिमाग की बातें आप सब तक पहुंचाऊंगा तो शायद बीच बीच में थोड़ा सा आप सबको बेहतर भी लगे और शायद ज़्यादा गहराई तक वो आप तक पहुंचे भी। इसी बात को ध्यान में रख कर मैं कुछ बातें आप सबसे शेयर कर रहा हूं और स्थान के बारे में जो मैं बातें फिलहाल कर रहा हूं, आप ये मानकर चलिए कि आज यह उसका अंतिम एपिसोड है। और खासकर अभी मैं जिस बिंदु पर बात कर रहा हूं उसके पीछे एक बहुत सोचा समझा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य यह है कि जब भी गांव से स्टूडेंट आते हैं, और मैं देख रहा हूं कि नगरों में, महानगरों में अब गांव से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा है और यहां तक कि जो छोटे मोटे कस्बे हैं या जो छोटे शहर हैं उन्हें भी फिलहाल आप गांव में ही शामिल कर लीजिए कि छोटा शहर है लेकिन किसी वजह से उन्हें बड़े शहर में जाना पड़ रहा है, महानगर में जाना पड़ रहा है, तो बहुत जबरदस्त किस्म के द्वंद्व से गुजरते हैं। बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में परेशानियां होती हैं, संकोच होता है, वे बहुत ज़्यादा हीन भावना से ग्रसित होते हैं और उसका कुल मिलाकर परिणाम ये होता है कि उन्हें जो करना चाहिए वहां जा करके वो नहीं कर पाते। तो मैंने कैसे उन सारी स्थितियों का मुकाबला किया या उनसे निजात पाई, बस इसके माध्यम से यही बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। एक बार मैं रवीश कुमार जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था। रवीश कुमार जी ने बताया कि जब वो अपने गांव से और शहर आए, महानगर दिल्ली आए, तो जब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के सामने पहुंचते थे और देखते थे तो अपने को बहुत बौना महसूस करते थे। उन बिल्डिंग्स में घुसने में उनको डर लगता था। ऐसा होता है, ये बहुत स्वाभाविक है क्योंकि हम एक छोटी सी जगह में रह रहे हैं, वहां के वातावरण में है, तो हम उसके आदि हैं, हम उसी के अभ्यस्त हैं। और अब बिल्कुल अब इतना विराट स्वरूप अगर हमें दिखाई देगा तो भयभीत होना बिल्कुल स्वाभाविक है। इसीलिए अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो गलत नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम हमारे साथ ऐसा ही होने दे रहे हैं तो डेफिनेटली फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने एमए तक की बात आप सबको बताई थी कि फिर मैंने एमए में एडमिशन ले लिया। चलिए एमए प्रीवियस मेरा हुआ, एमए फाइनल मेरा हुआ और मुझे यूनिवर्सिटी में सेकंड पोजीशन मिली। यहां भी मेरा सपना टूट गया। जो एक उद्देश्य था कि गोल्ड मेडल लेना है, वो गोल्ड मेडल मुझे नहीं मिल सका। ये बात अलग है कि बाद में मेरी पत्नी ने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करके मेरे इस कम से कम अधूरे सपने को तो पूरा कर ही दिया। मेरी सेकंड पोजीशन आई और उस समय जो रायपुर विश्वविद्यालय था बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। अब तो उसमें से 2-3 विश्वविद्यालय और बन गए। दो तो मैं जानता ही हूँ, अंबिकापुर में एक यूनिवर्सिटी खुल गई है, बिलासपुर में एक यूनिवर्सिटी खुल गई है, और खुल गई हो तो मुझे नहीं मालूम। बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था दोस्तों। अब देखिए कि होना क्या था कि उसी साल जिस साल मैंने एमए किया अंबिकापुर कॉलेज में लेक्चररशिप की पोस्ट निकली। उसमें 2 पोस्ट हिंदी लेक्चरर्स की थी एडहॉक पर, 2 लोगों की पोस्टिंग होनी थी। एक की पोस्टिंग के लिए हमारे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे उन्होंने फाइनल कर लिया था, वो उनके बहुत प्रिय विद्यार्थी रहते थे तो ये था कि इनका तो होना ही होना है। हालांकि कैरियर वाइज वो मेरे से बहुत कम थे। अब एक और पोस्टिंग होनी थी और उसके लिए बहुत से लोगों ने अप्लाई किया था, जिन लोगों ने एमए किया हुआ था लिटरेचर में, उसमें एक मैं भी था। लेकिन मेरे साथ एक अच्छी बात थी और यहां मैं इसको जोर देकर के कहना चाहूंगा, और ये मेरी अभी भी कुछ इसी तरह की आदत है कि अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूं तो मेरी कोशिश होती है कि इसे मैं बेहतर तरीके से करूं, जितने मेरी औकात है जितना मैं कर सकता हूं फिर उसे बेहतर तरीके से करूं। मैं ये नहीं सोचता हूं कि ये मेरे कितने काम का है, आगे जाकर के इससे कितना फायदा होगा, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, टाल मटोल नहीं। अगर मुझे वह काम दिया गया है तो मुझे अपना 100% उसमें देना चाहिए। देखिए मैंने बताया कि 11th किया मैंने, इसके बाद ग्रेजुएशन किया, तो ग्रेजुएशन करने करते समय कुछ ऐसा नहीं था कि आगे जाकर के लेक्चररशिप मिलेगी इसकी वजह से, कुछ ऐसा था ही नहीं, दूर दराज तक बात नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरे 58 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे। ग्रेजुएशन में इतने मार्क्स मिलने बहुत मुश्किल होते थे। मेरे 11th में भी, हम लोग के समय में 11th ही होता था, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। तो मैं इन तीनों के आधार पर ही आपको लेक्चररशिप मिलनी थी। तो दोस्तों वह मुझे मिली, लेकिन अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो मिली क्यों। इसलिए क्योंकि एक तो मैं शहर में आ गया था, दूसरा यह कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे वो मुझे बहुत अच्छे तरीके से जान गए थे, समझ गए थे, और फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी का तो सपोर्ट मेरे पीछे था ही। यदि मेरे पास ये सपोर्ट नहीं होता तो मैं जानता हूं कि केवल मुझे मार्क्स के आधार पर ये पोस्ट कभी नहीं मिलती, क्योंकि मेरी जो दूसरी प्रतिद्वंदी थी वो मेरे साथ ही पढ़ती थी और उनके पिता उसी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, और प्रिंसिपल को ही ये पूरा अधिकार था अपॉइंटमेंट का, पूरा अधिकार अपॉइंटमेंट का था। लेकिन मेरे मार्क्स इतने अच्छे थे, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से परिचय है, फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे जी से परिचय है, तो उन्हें लगा कि नहीं, इसको पोस्टिंग अगर नहीं दी गई तो इसके साथ किया जाने वाला अन्याय होगा। दोस्तों मुझे लेक्चररशिप मिल गई, और जब लेक्चररशिप मिल गई तो जिंदगी बदल गई। इससे पहले भी जब मैं एमए कर रहा था, एमए प्रीवियस एमए फाइनल में था, उसी समय ऑल इंडिया रेडियो अंबिकापुर में खुल गया। चूंकि हम लोग लिटरेचर में थे तो वहां के जो डायरेक्टर थे अमीक हनफी साहब, मैं बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लेता हूं, और जब मैं दिल्ली गया था तो उनसे मैं स्पेशली मिलने गया था, उस समय वो डायरेक्टरेट में पोस्टेड थे। तो दोस्तों उनको था कि प्रोग्राम करने वाले स्टूडेंट चाहिए, तो लिटरेचर वालों को उन्होंने बुलाया, क्योंकि उनका मानना था कि लिटरेचर वाले कम से कम कुछ तो ज्ञान रखते हैं, उनकी भाषा ठीक ठाक होगी। तो हर महीने वहां प्रोग्राम मिलने लगा ऑल इंडिया रेडियो में। अब जब आपको प्रोग्राम मिलने लगा तो अब आप उसके लिए लिख रहे हैं, फिर अपना अपने आवाज में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो एक कैरियर का अलग पक्ष शुरू हो गया। ये इसलिए शुरू हो सका क्योंकि मैं अंबिकापुर में था। फिर मैं जब दुकान खोल करके बैठा रहता था तो मैं देखता था कि हमारे सामने से एक कार निकलती थी और उस कार को एक महिला चलाती थी। पूछने पर पता चला कि ये जो महिला है यहाँ के कलेक्टर की वाइफ है, जो खुद में डॉक्टर है, तो वो अस्पताल जाती हैं। उनको देख करके बड़ा उत्साह हुआ कि अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात है, कलेक्टर कैसे बना जाता है, जरा सा ऐसे पता लगाया जाए। तो कुल मिलाकर के ये दोस्तों की ये सब कुछ जो हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं अंबिकापुर आ गया, और सिर्फ अंबिकापुर आ गया इसीलिए नहीं हुआ, बल्कि आने के बाद मैंने अपनी सीमाओं को तोड़ने की हर संभव कोशिश की, और मेरे दिमाग में केवल एक ही बात रहती थी। प्लीज आप सब नोट कर लें जो मेरी जैसे ही यातना से, आंतरिक यातना से गुजर रहे होंगे, कि मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। आपको रिजेक्ट करने का पूरा अधिकार है, आप रिजेक्ट कर दीजिए। अगर आप रिजेक्ट कर देंगे तो उसमें मेरा क्या नुकसान होगा? मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें मेरे स्वाभिमान को कहीं चोट नहीं पहुंचेगी, मैं इसके बारे में कहीं बुरा नहीं मानूंगा, कहीं निराश नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का अधिकार आपके पास है। ठीक उसी तरह से अपनी बात कहने का अधिकार मेरे पास है, और मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं और पूरी विनम्रता के साथ रख रहा हूं। आप मुझे सुनिए और इसके बाद निर्णय लीजिए। आपको इसके बारे में कोई संकोच नहीं करना चाहिए और मन से हर तरह के भय को हटा देना चाहिए। तब जाकर के आप जिस स्थान पर जा रहे हैं या हैं उसका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों अब इसी के साथ ही अब इस टॉपिक को मैं यहीं समाप्त करने की आप सबसे इजाजत चाहता हूं। अब किसी नए विषय पर फिर बात करेंगे। नमस्कार।